20 नवंबर दिन भर दिन सोमवार। मैं हूं रेहान फदल। नरेंद्र मोदी ने पेरिस में ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
दिस इज व्हाट वी सी इन गांधीजी लाइफ एंड हिज एडवाइस दैट द वर्ल्ड हैज इनफ एवरीवनस नीड बट नॉट फॉर एनीवनस ग्रीड।
जिक्र होगा दिल्ली में हुए भारत भाषा महोत्सव का। होंगे आपके पत्रों के उत्तर और खेल समाचार भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के 147 देशों के नेता फ्रांस की राजधानी पेरिस में जुटे हैं। इस सम्मेलन में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए ठोस समझौते के लिए चर्चा की जा रही है। कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन कम करने को लेकर अपनी योजना सामने रखी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा कि विश्व को इस दिशा में जल्दी आगे बढ़ना होगा, और अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि बैठक एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी भारत इसका दंश झेल रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उत्सर्जन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विकासशील देशों को आर्थिक मदद की जरूरत है।
डेवलप्ड कंट्रीज शुड ऑनर देयर कमिटमेंट ऑफ मोबिलाइजिंग 100 बिलियन यूएस डॉलर्स।
विकसित देशों को 2020 से पहले प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देने के अपने वायदे पर कायम रहना चाहिए, और इसके बाद भी विकासशील देशों को वित्तीय मदद मुहैया करानी होगी। ये भी बहुत जरूरी है कि जलवायु के अनुकूल तकनीक विकासशील देशों को दी जाए। ये थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। देश में बढ़ती कथित असहनशीलता पर लोकसभा में बहस के दौरान सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर दिए एक बयान से विवाद खड़ा हो गया। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम ने एक पत्रिका में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नाम से छपी एक टिप्पणी पढ़ी, जिसमें 800 साल बाद हिंदू शासक का जिक्र किया गया था। पत्रिका के मुताबिक ये बयान राजनाथ सिंह ने पिछले साल आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बात दिया था। इस पर भाजपा सांसदों ने आपत्ति जताई, और फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाऊतोग्लू ने सीरियाई सीमा पर रूसी विमान गिराने के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। पिछले हफ्ते सीरिया की सीमा के पास रूस का एक सैन्य विमान तुर्की ने गिरा दिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की की इस कार्रवाई को पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया था और माफी मांगने को कहा था। ब्रसेल्स में नेटो की बैठक में अहमद दाऊतोग्लू ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन इसके लिए माफी नहीं मांगी जाएगी। इस बीच रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि तुर्की पर रूस और आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कैप्टन क्रिस केन्स को इंग्लैंड की एक अदालत ने झूठी गवाही के एक मामले में बेकसूर करार दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने को लेकर किसी ठोस समझौते पर पहुंचने के लिए 2 हफ्तों तक चलने वाली दुनिया के महत्वपूर्ण नेताओं के अहम बैठक का पेरिस में आज आगाज हो गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की इस बैठक को COP21 का नाम दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद दुनिया भर के देश किसी एक ऐसे समझौते पर पहुंच पाएंगे जिससे दुनिया के बढ़ते तापमान को औद्योगीकरण से पहले के दौर की तरह केवल 2% तक की बढ़त पर ही सीमित किया जा सके। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पेरिस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारतीय पवेलियन में अपने एक संबोधन में भारत की ओर से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ रोहित जोशी।
क्षेत्रस्य पते
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद के श्लोकों को पढ़ते हुए भारत को पर्यावरण के प्रति अपने अतीत से ही सजग बताया। साथ ही इसके लिए मोदी ने महात्मा गांधी की विचारधारा का भी हवाला दिया।
दिस इज व्हाट वी सी इन गांधीजी लाइफ एंड हिज एडवाइस दैट द वर्ल्ड हैज इनफ।
हम गांधी जी के जीवन में और उनकी दी गई सलाहों में भी इसी बात को देखते हैं। उनका कहना था कि दुनिया के पास हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त मात्रा में संसाधन हैं, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं हैं। हमारे पास अपनी परंपरा से ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझने की जरूरत है, और इसलिए ही चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना और उन्हें सहेज कर रखना हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से है। हमारे देश में जंगलों को पवित्र मानकर सहेजने की परंपरा है, और यही बातें हमें वो प्रेरणा देती हैं जिससे हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी रणनीति बना पाएंगे। ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने कहा है कि मानवता का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, और अगर इस मौके को खो दिया गया तो इतिहास इस दौर की सरकारों को बहुत बुरी तरह याद करेगा।
Le réchauffement annonce des conflits comme la nuée porte l'orage.
जलवायु परिवर्तन ठीक उसी तरह तनाव लेकर आएगा जैसे घने बादल तूफान लेकर आते हैं। इसके चलते पलायन में भी बढ़ोतरी हो रही है, और उससे युद्ध से भी अधिक शरणार्थी पैदा हो रहे हैं। सरकारों के सामने ये संकट गहराता जा रहा है कि वे अपनी जनसंख्या के आधार पर बुनियादी जरूरतों का सामान भी मुहैया नहीं करा पाएंगी। इसके साथ ही अकाल का खतरा बढ़ता जाएगा, बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों से पलायन होगा, और दुर्लभ होते जा रहे साफ पानी के लिए लोगों के बीच संघर्ष भी बढ़ता जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इस जलवायु सम्मेलन में दुनिया भर की शांति दांव पर लगी हुई है। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद के शब्द। इस सम्मेलन में जहां फ्रांस, चीन और अमेरिका ने आम सहमति बनने की संभावना जताई है, वहीं भारत ने स्पष्ट कहा है कि विकसित देशों को विकासशील देशों की तुलना में कार्बन के उत्सर्जन में अधिक कटौती करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूड यूएन रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी के लेखक रहे हैं। उन्होंने भारत के दावे से सहमति जताई है और कहा है कि अत्याधुनिक तकनीक जलवायु परिवर्तन के लिए बनाए जा रहे लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए मददगार साबित हो सकती है। भारत जिस बात को लेकर विरोध जता रहा है, ये एक तथ्य है कि वो चीन के मुकाबले औद्योगिक विकास के एक दूसरे स्तर पर है, और चीन के औद्योगिकीकरण के दौरान अधिकतम कार्बन उत्सर्जन करने की शुरुआत 1980 में रही है, और फिर 2010 से 2015 तक ये सिलसिला जारी रहा है। हमारे सामने ये चुनौती है कि हमें भारत के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि भारत के औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को पर्यावरण सम्मत बनाया जा सके, और यह तब संभव है जब तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल हो पाए। ये थे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रूड के शब्द। हालांकि बीबीसी के एक संवाददाता का कहना है कि जो संकल्प इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार वैश्विक तापमान को घटाकर 2 डिग्री की बढ़त के स्तर तक ला पाने के लक्ष्य को पाना मुमकिन नहीं है। दुनिया के 180 देशों का आकलन इस सम्मेलन में रखा जाना है, और अगर इन्हें मान लिया गया तो दुनिया के तापमान में वृद्धि लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी।
पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शुरू।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
विपक्षी दलों की मांग पर आज लोकसभा में देश में बढ़ती असहिष्णुता पर बहस हो रही है। ये बहस नियम 193 के तहत हो रही है, यानी बिना इसमें सांसद बहस के बाद वोटिंग नहीं करेंगे। बहस शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों से दरख्वास्त की कि बहस सहिष्णु तरीके से हो और सत्ता पक्ष और विपक्ष सहज तरीके से अपनी बात रखे, लेकिन सदन में तलखी और शोर बरकरार रहा। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
अंडर रूल 193 रिगार्डिंग द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ इनटॉलरेंस इन द कंट्री, सो आई एम एक्सेप्टिंग इट नाउ। मोहम्मद सलीम जी।
बहस की शुरुआत करने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम ने अपने संबोधन में कई बिंदु सामने रखे। उन्होंने कहा कि अधिक संख्या वालों के अपनी ताकत दिखाने की वजह से देश में विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है। पर उनकी बात शुरू होने के 15 मिनट बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने सदन की कार्रवाई ही ठप कर दी।
भाषण में क्या कहा गया, 800 साल बाद कोई हिंदू फिर से इस देश का शासक बना है। ये लोकतंत्र की दुहाई है, ये सेकुलरिज्म की दुहाई है, ये संविधान की दुहाई है, किसको इशारा कर रहे हैं? जब आप इलेक्शन मीटिंग के बाद, इलेक्शन के विक्ट्री के बाद, गृहमंत्री जी बोले।
आउटलुक पत्रिका के एक लेख में इस टिप्पणी को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नाम से छापा गया है। पत्रिका के मुताबिक ये बयान राजनाथ सिंह ने पिछले साल आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद दिया था। हालांकि मीडिया में रिपोर्ट्स के आधार पर ये बयान विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने नवंबर 2014 में दिया था। राजनाथ सिंह ने इस पर भारी आपत्ति जताई।
मैं इससे बेहद आहत हुआ, सारे सम्मानित सदस्य सदन के जानते हैं और सदन के ही सदस्य नहीं जानते, हिंदुस्तान का माइनॉरिटीज कम्युनिटी का भी इंसान इस बात को जानता है कि राजनाथ सिंह इस प्रकार के स्टेटमेंट कभी नहीं ले सकते। मैं बराबर जब बोलता हूं सोच समझ कर बोलता हूं, ना तौल कर बोलता हूं। मैं आहत हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, आपसे मैं संरक्षण चाहता हूं।
अपना बचाव करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो तो सिर्फ एक पत्रिका में लिखी बात पढ़ रहे थे और अगर गृह मंत्री के बयान को गलत तरीके से छापा गया है तो वो पत्रिका को कानूनी नोटिस भेजे।
मैं खड़ा हूँ, क्या करोगे? कर लो, क्या करोगे? फांसी में चढ़ाओगे? सुली में चढ़ाओगे?
आखिरकार मुद्दे पर हंगामे और बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बीच लोकसभा स्पीकर ने कहा कि ये चर्चा सदन के रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगी और वो इस पूरे मामले की समीक्षा करेंगी। आखिर फिर बहस को आगे ले जाते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने देश में असहिष्णुता से संबंधित कई वाक्यों का जिक्र किया और सरकार पर कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। साथ ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और मंत्रियों के कई विवादास्पद बयानों को दोहराते हुए कहा,
क्या देश या सरकार की आलोचना करने वाले हर व्यक्ति को जवाब में यही कहा जाएगा कि पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जाओ, वरना तुम्हारी बातें और सोच हाफिज सईद जैसी हैं।
वेणुगोपाल ने अपने संबोधन में लेखकों, फिल्मकारों, वैज्ञानिकों इत्यादि के सम्मान लौटाने की ओर भी ध्यान दिलाया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब मीनाक्षी लेखी बोलना शुरू हुई तो बेहद गर्म तेवर के साथ कहा कि आरोप लगाने वाले पहले खुद आईना देखें।
आज मैं आपको इस देश के तथ्य बताना चाहती हूं। आज मैं आपको तथ्य बताना चाहती हूं कि 2006 में भी काउस लॉटर के ऊपर दंगे हुए थे, 2013 में भी काउस लॉटर के ऊपर दंगे हुए थे। ये भी इस देश का इतिहास है और इस देश के इतिहास के मुताबिक आप किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।
असहिष्णुता पर यह बहस मंगलवार को जारी रहेगी जब सभी विपक्षी पार्टियों के अपना पक्ष रखने के बाद सरकार की ओर से बात रखी जाएगी। लंबे अरसे से देश में इस मुद्दे पर हो रही लंबी चर्चाओं के बाद सरकार के जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
अपनी सत्ता के 9 महीने के कार्यकाल के बाद सोमवार को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली विधानसभा में आखिरकार जन लोकपाल बिल पेश कर दिया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र के लिए काम करते हों या फिर राज्य सरकार के लिए, लोकपाल अपने स्तर पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकते हैं। हालांकि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सहित आम आदमी पार्टी के कई पुराने साथी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली की विधानसभा के बाहर उस वक्त हो रहा था जिस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जन लोकपाल विधेयक विधानसभा के पटल पर रख रहे थे। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जन लोकपाल बिल के पेश किए जाने को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि ऐसा ही विधेयक राष्ट्रीय स्तर पर भी लाया जाए। विधानसभा में बोलते हुए आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरला का कहना था,
बधाई देना चाहती हूँ इस दिल्ली जनता को कि उन्होंने जिस सपने के साथ इस आम आदमी पार्टी को उनकर प्रचंड बहुमत के साथ इस सदन में भेजा था, आज उन सब लोगों का सपना पूरा हो रहा है। उनका जन लोकपाल बिल पास हुआ, पटल पर रखा गया और अब बस ईश्वर से, सदन से नहीं ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करती हूँ कि केंद्र इस जन लोकपाल को एज इट इज पास करे और दिल्ली में जो है इम्प्लीमेंट हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है।
मगर विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन में कभी अरविंद केजरीवाल के साथ रहे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी थे, जिनका दल स्वराज अभियान दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए जन लोकपाल विधेयक से खुश नहीं है। अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे योगेंद्र यादव का कहना था,
आज से 4 साल पहले रामलीला मैदान के खुले आकाश के नीचे एक सपने ने जन्म लिया था। वो सपना था कि इस देश के नागरिक अपनी हिम्मत से, अपने दबाव से इस देश में भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए एक जन लोकपाल लाएंगे। आज यहाँ से आधा किलोमीटर दूर विधानसभा की बिल्डिंग के अंदर उस सपने की हत्या करने की कोशिश की जा रही है।
वहीं प्रदर्शन में बोलते हुए जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने कहा,
ऐसे ऐसे झूठे प्रचार करे जा रहे हैं कि भाई हम वही बिल ले आए जो कि अन्ना आंदोलन में बनाया गया था, हम वही बिल ले आए जो उत्तराखंड का बिल था, हम वही बिल ले आए जो 2014 में लाया गया था। बिल्कुल झूठ, मतलब एक के बाद एक झूठ ये सोच के बोला जा रहा है कि 100 बार वही झूठ बोलो तो फिर लोग उस पर विश्वास कर लेंगे कि ये जो फ्रॉड महाजोगपाल बिल है इसको वापस लिया जाए और जन लोकपाल बिल को पारित तुरंत किया जाए। और इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से पीसफुली मार्च कर विधानसभा की तरफ जाना चाहते हैं।
जुलूस जैसे ही विधानसभा की ओर बढ़ा, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पुलिस ने उनके समर्थकों के साथ हिरासत में ले लिया। इस पर प्रशांत भूषण ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जो पार्टी विरोध प्रदर्शनों को लोगों का अधिकार कहती आ रही थी वो अब बेनकाब हो चुकी है।
पुराने साथी जिसको कहते थे कि भाई ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है लोगों को प्रोटेस्ट से रोकना, आज वही लोग ये सब कर रहे हैं, रोक रहे हैं लोग।
सदन के बाहर हो रहे हंगामे के बीच उम्मीद की जा रही है कि इस विधेयक को मंगलवार को पारित करवा लिया जाएगा। चूंकि दिल्ली सरकार के लोकपाल को केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भी जांच का अधिकार होगा, इसलिए जानकारों को ऐसा लगता है कि विधेयक के पारित होने के बाद केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच टकराव का एक और नया दौर शुरू हो सकता है। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। साहित्य, कला, संगीत, बातचीत, व्यंजन, प्रतियोगिताएं और वर्कशॉप, ये सब एक साथ मिले दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में, जहां पूरे भारत की विविध भाषाओं पर 26 नवंबर से 29 नवंबर तक 5वां भारतीय भाषा महोत्सव समन्वय 2015 का आयोजन किया गया। सुनिए इंदु पांडे की रिपोर्ट।
दिल्ली में एक कहानी ऐसी जो शुरू होती है साबरमती से। कला को आम लोगों तक पहुंचाने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश की गई इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां साहित्य मिला, कला देखने को मिली, संगीत सुनने को मिला, कई प्रस्तुतियां हुई, आपसी बातचीत हुई, खाने के लिए कई प्रकार के व्यंजन थे, प्रतियोगिताएं हुई और वर्कशॉप भी थी। ये सब एक साथ मिले समन्वय भाषा महोत्सव में। ये महोत्सव 26 नवंबर से शुरू हुआ और 5वां भारतीय भाषा समन्वय का आयोजन 29 तारीख तक किया गया। इस महोत्सव में 5 भाषाओं मिजो, तमिल, बांग्ला, मराठी और डोगरी पर विस्तार से चर्चा की गई। इसका उद्देश्य था लेखक के रचना संसार और भाषाई साहित्यिक परंपराओं का पता लगाना। इस विषय पर अनेक कवियों, लेखकों ने कहा और कविता पाठ भी सुनाया। ये है प्रमिला मिन्हास, जो कि डोगरी भाषा की कवित्री हैं। इनके साथ ही यहाँ पे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाने माने लेखकों में अशोक वाजपेयी, उर्वशी बुटालिया, के सचिदानंदन, तेजिंद, अरुणम सिन्हा शामिल रहे। माया कृष्णा, जो कि पिछले 40 सालों से थिएटर से जुड़ी हैं, अपनी सोलो परफॉर्मेंस की वजह से जानी जाती हैं, वो डांस करती हैं, एक्टिंग करती हैं, एक रचनाकार हैं और खुद को डायरेक्ट भी करती हैं। माया कृष्णा बता रही हैं कि आखिर क्यों जरूरी है इस तरह के फेस्टिवल।
जो एक प्राइवेट लिविंग रूम में जिस किस्म की बातचीत होती है, अगर एक पब्लिक फोरम में वो प्राइवेट बातें हैं और जिस दौर से हम अभी गुजर रहे हैं, ऐसी बातचीत पब्लिक अरीना में होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो इस तरह के फेस्टिवल और होते रहने चाहिए।
बिल्कुल होते रहने चाहिए, लेकिन दैट नाइस मिक्स। इस फेस्टिवल की खूबियत यह है कि दे आर नॉट जस्ट डीलिंग विद रेजिस्टेंस, दे आर डीलिंग विद लैंग्वेज। वेयर डज लैंग्वेज कम फ्रॉम, लैंग्वेज का हमारी जिंदगी में मायना क्या रखता है।
समन्वय फेस्टिवल के निर्देशक राकेश कक्कर का कहना है कि भारतीय भाषाओं बोलियों को बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में उभरने पर उनको खुशी है।
ये भारतीय लैंग्वेजेस का एक सेलिब्रेशन है, हर साल एक नया थीम होता है।
तो किस आधार पे चुनाव करते हैं भाषाओं का?
कि हर एक भाषा का 4-5 साल में, क्योंकि देश इतना बड़ा है तो सारे भाषाएं एक साथ एक ही साल में नहीं हो पाती है, तो बारी बारी करके पूरे देश की भाषाएं को हम चुनते हैं।
सुबह से लेकर के शाम तक चलने वाले इस महोत्सव में लोगों ने अपने कवियों, लेखकों और दूसरे कलाकारों के साथ आमने सामने बात की।
लिटरेचर फेस्टिवल में मैं हूँ, यहाँ पे वाणी प्रकाशन ने मेरी किताब आखिरकार हाथ में आ ही गई और समाज में भी सबके पास है ये किताब, तो कोई टेंशन की बात नहीं है अभी।
ट्रांसजेंडर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं ये, जिन्होंने अपनी किताब मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी का लोकार्पण भी इसी फेस्टिवल में किया।
मुकेश, आप हमेशा आते हैं इस फेस्टिवल में?
जी, मैं एक्चुअली एलजीबीटी राइट्स पर काम कर रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं ये जो इस तरह के इवेंट्स हैं इसमें सेक्सुअलिटी और जेंडर से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं तो उनको मैं सर्च करता हूँ। आज बिल्कुल मुझे ऐसा लगा है कि जैसे मैं पहले माया कृष्णा राव जी का जो वो देखा है लाइव, जो उनका वो हुआ था प्रोग्राम, लेकिन आज जैसे उनसे मिला हूँ तो उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया है कि कोई हमारे प्रोग्राम को देखकर जो है इंस्पायर होता है और चीज़ें सीखता है। तो वाकई में मुझे आज जो उनसे मिलकर और उनके जो रिस्पॉन्स आया उससे मुझे लगता है कि वो भी ये सोचते हैं कि हमारे जो जानने वाले लोग हैं वो इससे बेनिफिट लेते हैं।
और इन सब के साथ साथ शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। ऐसे ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत में रह रहे तिब्बती कवि, लेखक और कार्यकर्ता तेंजिन का मानना है कि दूसरी पीढ़ी के तिब्बतियों के पास सिर्फ उधार में मिली यादें हैं। तिब्बती गायक लोते नामलैंग की प्रस्तुति भी लोगों के दिलों में बस गई। और इसी प्रस्तुति के साथ मैं इंदु कहना चाहती हूँ अलविदा, इस बात के साथ कि सपने में रात आई दिल्ली और देर तलक बतियाती रही दिल्ली। लोगों ने 4 दिन तक इस समन्वय महोत्सव का खूब आनंद उठाया। इंदु पांडे, BBC दिल्ली।
आज सोमवार है और आज आपको इंतजार होता है अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं स्वाति बख्शी और राजेश जोशी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं
मैं हूँ स्वाति बख्शी।
जी हाँ, बिल्कुल वही आपकी पुरानी चहेती स्वाति बख्शी चिट्ठियां लेकर के हाजिर हैं। बताइए स्वाति, क्या क्या चिट्ठियां?
सबसे पहली चिट्ठी जो मैं ले रही हूँ राजेश जी, बहुत खास है। खास इसलिए, शायद मैंने पिछली बार भी यही कहा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही खास है क्योंकि हमारी जो महिला श्रोता है उनकी चिट्ठियां बहुत कम आती है। तो नम्रता कुशवाहा की चिट्ठी आई है नई टाण जमुआ गिरिडीह से। लिखती हैं कि सबसे पहले BBC परिवार को नमस्कार। 4 नवंबर 2015 को संदीप सोनी के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम दुनिया जहां दिल को छू गया, उन्हें जो गाना इस्तेमाल उन्होंने किया था मेरे पिया गए रंगून, वो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। और कहती हैं कि भाषा शैली और डिजिटल प्रसारण इन्हें काफी अच्छा लगता है। साथ ही कहती हैं कि BBC मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।
देखिए, अब मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है क्योंकि एक हमारी श्रोता है जिन्होंने हमारी बहुत पुरानी गुजारिश को सुना है और चिट्ठी लिखी है। जितनी भी महिला श्रोता हमारी हैं, जो चाहे स्कूल में पढ़ रही हों, कॉलेज में पढ़ रही हों, नौकरी करती हों, पढ़ाती हों, हम उनसे फिर से गुजारिश करेंगे कि हमारे कार्यक्रम जब आप सुनती हैं कृपया कलम उठाइए, कागज़ लीजिए और हमें लिख डालिए अपने दिल की बात। ज़रूर हम आपकी चिट्ठियों का यहाँ प्रसारण करेंगे। और जमुई टांड से नम्रता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप सोनी की रिपोर्ट आपको बहुत पसंद आई, बहुत मेहनत से काम करते हैं संदीप सोनी, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में ऐसी ही तमाम रिपोर्टें आप फिर सुनती रहेंगी, लेकिन चिट्ठी लिखना मत भूलिएगा।
अगली चिट्ठी राजेश जी, पोस्ट कार्ड है दिलावर कादरी मेहराबादी ने, जैसलमेर राजस्थान से लिखा है, और ये बिहार चुनावों की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि वाकई में पाटलिपुत्र ने साबित कर दिया कि आज के हिंदुस्तान की रगों में भी धर्मनिरपेक्षता जिंदा है। लेकिन साथ ही लिखते हैं कि इंद्रप्रस्थ में नीतीश की 2019 में निश्चित रूप से चुनौती पेश करेंगे।
वाह कादरी साहब, वाह, बिल्कुल इंद्रप्रस्थ, और आपने तो जबरदस्त ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यान एक तरह से लिख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये पोस्टकार्ड से चिट्ठी इन्होंने भेजी है।
जी हाँ।
ये रहने वाले हैं जैसलमेर के। दिलावर कादरी साहब, आप जैसलमेर में हमको सुनते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब बिहार के लोगों ने जो फैसला दिया है वो सबको मालूम है, 2019 में क्या होगा इसके लिए हम अभी से तो कोई कयास नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो भी होगा वो जनता का फैसला होगा।
अगली चिट्ठी बाड़मेर से है राजेश जी, और ये चिट्ठी 12वीं क्लास में पढ़ने वाले जेठाराम पवार की।
जेठाराम पवार तो हमें लगातार चिट्ठियां लिखते
हैं। आज उनकी दो चिट्ठियां मेरे पास है, पर मैं एक ही पढ़ पाऊंगी।
जी पढ़िए।
लिखते हैं कि रेहान फजल की तारीफ उन्होंने पिछली बार भी की थी, इस बार भी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब भी वो कोई रिपोर्ट पेश करते हैं लगता है कि स्वयं कृष्ण भगवान आकर पांडव पुत्र अर्जुन
भाई। जेठाराम पवार जी, आपसे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि आपको रेहान फजल की कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उनका नाम आप हमेशा रियांद फंजल लिखते हैं। तो उनका नाम है रेहान फजल, और मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में कुछ ईमेल भी हैं।
जी हाँ, ईमेल प्रदीप सिंह का कुमारगंज फैजाबाद से है, इन्होंने तारीफ किया है इंडिया बोल कार्यक्रम की जो 28 तारीख को पेश किया
इसी शनिवार को।
जी,
कहते हैं दिव्या आर्य ने वो प्रस्तुत किया था कार्यक्रम। हाँ, पहली बार किया था और बहुत अच्छा किया था।
जी भाई, ये भी कह रहे हैं कि इंडिया बोल लेकर आई थी दिव्या आर्य, शायद पहली बार, उन्होंने उम्मीद से बेहतर प्रस्तुति दी है।
इन्होंने तारीफ तो की है, लेकिन क्या ये भी लिखा है कि दिव्या आर्य की प्रस्तुति में क्या चीज इनको पसंद आई या सिर्फ तारीफ?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ तारीफ लिखी है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि सुबह के कार्यक्रम डाउनलोड कर पाने की जो सुविधा नहीं है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। साथ ही ये कह रहे हैं कि जब तक सुबह का कार्यक्रम डाउनलोड करने की सुविधा नहीं है, अगर वसतुल्ला खां की डायरी और ब्रजेश उपाध्याय की जो वॉशिंगटन डायरी आती है वो शाम के कार्यक्रम में दोबारा सुनवा सकें तो अच्छा होगा।
इसके बारे में हम बिल्कुल सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि किस तरह से वो बीबीसी ऐप डाउनलोड करके सुन सकते हैं, जरा उनका नाम पढ़िए और पढ़िए।
अनंत सिंह ने लिखा है महदू पार अमिला जनपद मऊ उत्तर प्रदेश से, ये कहते हैं कि जो भी श्रोता डाउनलोड से संबंधित समस्याएं झेल रहे हैं उनके लिए आप उन्हें बता सकते हैं कि वो बीबीसी हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, फिर ऑडियो पर क्लिक करें, ADM या MX प्लेयर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो श्रोताओं, ये अगर आप कोशिश करें हमारे ऐप को आप डाउनलोड करके हमारे सभी कार्यक्रम सुनने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं अपने तमाम श्रोताओं को पहले भी बताता आ रहा हूं कि हम कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा चैलेंज हमको दे रही है, लेकिन जैसे ही हमें डाउनलोड की सुविधा मिलेगी हम आपको उसके बारे में सूचित करेंगे। लेकिन अब समय बहुत हो गया स्वाति, इसलिए मैं आपकी इजाजत चाहता हूं और श्रोताओं से भी हम इजाजत मांगे। चलते चलते पता बता देते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003।
और राजेश जी, जो लोग ईमेल लिखना चाहें उनको भी बता दें।
अरे वो तो मैं भूल ही गया, ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk। तो कहें नमस्कार।
अरे भाई, ये देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है, आदेश कुमार गुप्त के साथ बहुत संक्षेप में। आदेश
जी, रेहान, तीन महत्वपूर्ण बातें जिन पर आज नज़र है या रही। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा 2020 मैच शुरू होगा, और इसके अलावा रायपुर में हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल्स का मुकाबला खेला जा रहा है, जहां भारत का सामना नीदरलैंड से है। थोड़ी देर बाद मैच समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिलहाल भारतीय टीम 3-1 से पिछड़ रही है। उधर आर अश्विन के लिए आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि ICC टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजी में वो दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। और पीवी सिंधु, जिन्होंने कल मकाऊ ओपन लगातार तीसरी बार जीता था, वो कल से इंडोनेशिया मास्टर्स में अपनी चुनौती पेश करेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश, और चलते चलते एक नज़र समाचारों पर।
बीबीसी समाचार।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के 147 देशों के नेता फ्रांस की राजधानी पेरिस में जुटे। इस सम्मेलन में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए ठोस समझौते के लिए चर्चा की जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर हो रही बैठक एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। देश में बढ़ती कथित असहनशीलता पर लोकसभा में बहस के दौरान CPM सांसद मोहम्मद सलीम के केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर दिए एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।